ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये मिशन जन आंदोलन बन गया है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है। दिल्ली में 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को आज से ईंधन मिलना बंद हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दे नहीं सके। और 3 नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आज से 6 जुलाई तक राजधानी के भारत मंडपम में भव्य प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 2 वर्ष की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1,92,00,000 लाभार्थी पहली बार नियुक्ति पाने वाले होंगे। ये योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने में 15,000 रूपए तक का वेतन मिलेगा।
फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रूपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रूपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा।
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि देश में खेल परिदृश्य को बदलने और नागरिकों को खेल गतिविधियों के बारे में सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन ऐप का शुभारंभ किया जो रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्थापना दिवस पर श्री वैष्णव ने बताया कि रेल वन ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं। ये ऐप रेल संबंधित पूछताछ, PNR, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं और ट्रेन में भोजन जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव किया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट।
द्वितीय श्रेणी के लिए यात्री किराया 500 किलोमीटर तक अपरिवर्तित रहेगा, पर इससे अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 0.5 पैसे की वृद्धि होगी। यात्रियों को अब 501 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 रूपए, 1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रूपए तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रूपए अधिक देने होंगे। साधारण, स्लीपर श्रेणी और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को भी प्रति किलोमीटर 0.5 पैसा अधिक देना होगा। यह किराया संशोधन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियर और विशेष ट्रेन सेवाओं पर भी लागू होगा। संशोधित किराया 1 जुलाई या उसके बाद लिए गए टिकटों पर लागू होगा, जबकि से पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा दरों पर ही वैध रहेंगे। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने देश में आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन और भी सरल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कहा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है और यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री मोदी ने एक ब्लॉग में कहा कि भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों के आज 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को आजाद भारत के बाद का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के विचार पर आधारित थे, वहीं नए कानून भारत के लिए भारत द्वारा भारत के सिद्धांत पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून सजा की नहीं न्याय पर बल देते हैं।
सदियों पुराने कानून लगातार भारत की जनता को झेलने पड़ रहे और उस सजा के कानून को भारतीय न्याय संहिता में बदलने वाली हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, मैं आपको 140 करोड़ भारतीयों की ओर से धन्यवाद करती हूँ। सजा नहीं न्याय की बात भारत करता है और जिसको आपने संविधान में ला करके प्रत्येक भारतवासी को न्याय देने का साहसिक कार्य किया।
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 3 नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कहा है कि पिछले वर्ष 1 जुलाई को केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक सोच से बने आपराधिक कानूनों को समाप्त कर एक ऐतिहासिक पहल की थी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि इस पहल के अंतर्गत सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे ब्रिटिश काल के समय से चले आ रहे कानूनों को हटाकर एक स्वदेशी आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि ये केवल कानूनों का परिवर्तन नहीं बल्कि एक न्याय की सोच और प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव है। श्री सिरसा ने बताया कि इस ऐतिहासिक पहल की पहली वर्षगांठ के मौके पर आज से 6 जुलाई तक राजधानी के भारत मंडपम में एक भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है।
मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आइए इन कानूनों की आप भी जानकारी लीजिए, किस तरह हमारी माँ बहन बेटियों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए एक डिग्निफाइड तरीके से उनको इंसाफ मिल सके, किस तरह से इस देश को इन जंजीरों से बाहर निकाला गया है, ये आप आके साक्षात देखिए। आपको आमंत्रण है, जरूर आइएगा 1 से लेकर 6 जुलाई तक और आके देखिएगा देश कैसे बदल।
15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों और 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को आज से दिल्ली में ईंधन मिलना बंद हो गया है। दिल्ली सरकार ने समय सीमा समाप्त हो चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। इस बीच विशेष यातायात प्रबंधन पुलिस आयुक्त अजय चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस ने आज विभिन्न पेट्रोल पंपों पर 16 गाड़ियां जब्त की हैं। चौधरी ने कहा कि यह अभियान दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किया गया है।
दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए पूरी मुहिम छेड़ी गई है, पूरी कवायद की जा रही है। तो पूरा उद्देश्य यह है सभी स्टेक होल्डर्स का कि जब तक अक्टूबर नवंबर के महीने आए, क्योंकि वेहिकुलर पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है एयर क्वालिटी को खराब करने में, और इसीलिए इस ड्राइव को आगे भी जारी रखा जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि 1 नवंबर के बाद पड़ोसी जिलों में भी यही सेम पॉलिसी लागू की जाएगी कि किसी भी 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ी को फ्यूल न दिया जाए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देश भर के सभी चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से उन चिकित्सकों को सलाम किया जो गरीब, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों के निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और संत ईश्वर संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का योगदान केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की मजबूत आधारशिला है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और इसी क्रम में राजधानी में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 17 जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अस्पतालों को आधुनिक तकनीक और बुनियादी सुविधाओं से युक्त करने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है।
सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और काम करने के लिए हर एक जो फ्रंट है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाने के लिए उस पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो परमानेंट जॉब हो, इंडिपेंडेंट एमएस हो या फिर वहां पर टेक्निकल असिस्टेंस के नाते जितनी मशीनरी है उसको प्रोवाइड करना है, दवाइयों की उपलब्धता है, हर चीज जो है सरकार उसको संज्ञान में लेके काम कर रही है, मिशन मोड पे काम कर रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपरिहार्य कारणों से अपनी परीक्षा नहीं दे सके थे। एक रिपोर्ट।
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटेजा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 13, 14 और 15 मई को कई विद्यार्थियों की परीक्षा छूट गई थी। विश्वविद्यालय ने इन विद्यार्थियों को एक विशेष अवसर प्रदान किया है ताकि वे अपनी परीक्षा फिर से दे सके। इसके लिए विद्यार्थियों को एक गूगल फॉर्म भरना होगा जिसे इस महीने की 10 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य है। ये फॉर्म केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो इन तिथियों पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थियों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि वे ऑपरेशन सिंदूर के कारण उस समय दिल्ली में नहीं पहुंच सके थे। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार को राजधानी में पहली बार क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स की मंजूरी मिल गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने आज इसे मंजूरी दी। ये प्रयोग प्रदूषण को कृत्रिम वर्षा के जरिए कम करने की दिशा में किया जा रहा है। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग पर पूर्व सरकारों में चर्चा तो हुई लेकिन कभी जमीन पर इसका कार्यान्वयन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 30 अगस्त तक से 10 सितंबर के बीच क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स करने की योजना है। उन्होंने कहा कि उड़ानों की योजना पहले से तैयार कर ली गई है। श्री सिरसा ने कहा कि कुंडली बॉर्डर, अलीपुर बवाना, रोहिणी बुराड़ी, पावी सदकपुर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इलाकों में विमान क्लाउडिंग सीडिंग की जाएगी।
जो क्लाउड सीडिंग होगी एक छोटे सैंपल के रूप में आउटर दिल्ली में बवाना साइड पर एक छोटा सा सैंपल इसका किया जाएगा। 5 इसकी ट्रायल की जाएंगी और इसकी सॉर्टिस का जो पैसा है IIT ही करेगी, उन्हीं का सेसना प्लेन है इसलिए उनको ही पैसा दे दिया गया है। हमने पहले MOU साइन किया, पूरा कानूनी काम किया और फिर हमने अपनी परमिशन अप्लाई की, भागदौड़ की और सारी परमिशनें मिल गई।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज धर्मशाला में बौद्ध गुरु दलाई लामा से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्री गुप्ता ने विश्व शांति, करुणा और मानवता के प्रति समर्पित बौद्ध गुरु दलाई लामा के शाश्वत संदेश के प्रति अपनी गहन श्रद्धा व्यक्त की। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग इलाके से 5 ट्रांसजेंडर सहित बांग्लादेश के 7 अवैध नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार इनके पास से 3 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन मोबाइल फोन में भारत में प्रतिबंधित एक ऐप भी मिला है जिसके जरिए ये लोग बांग्लादेश में अपने परिवार से बातचीत करते थे। पुलिस ने बताया कि एक निर्वासित बांग्लादेशी नागरिक जिसने भारत में दूसरी बार अवैध रूप से प्रवेश किया उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज राजधानी में 3 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार तस्करों के पास से 22 किलो से अधिक मादक पदार्थ और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आसपास के इलाकों में मांग के अनुसार मादक पदार्थ की आपूर्ति करते थे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दिल्ली तथा NCR क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम। राजधानी में आज कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। धूप के कारण लोगों को उमस का भी सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है। दिल्ली में 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को आज से ईंधन मिलना बंद हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपरिहार्य कारणों से परीक्षा नहीं दे सके। और 3 नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आज से 6 जुलाई तक राजधानी के भारत मंडपम में भव्य प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।